نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم لوگ اسلام اے ٹو زی میں اس وقت معاملات پر ہیں اور معاملات میں سے بھی ہم آداب کا ٹاپک کسی حد تک کر کے اب ساتھ ہی ساتھ حقوق کو بھی شروع کر چکے ہیں اور حقوق بہت سارے لوگوں کے ہیں لیکن اگر ہم حقوق کو دیکھیں تو اس میں ہم نے ابھی تک معاشرتی حقوق دیکھے اس میں اہل علم کے حقوق اور اسی طرح سے جو ہمارے ہمسائے ہیں لیکن اس وقت آج ہم خاندانی حقوق کی سیڑھی پہ قدم رکھ چکے ہیں اور وہ کیا ہے والدین کے حقوق کے بعد زوجین کے حقوق کہ شوہر بیوی کے کیا حق ہے. حقیقت ہے کہ آج کی دنیا میں لوگ ایک دوسرے کا حق دینے یا نہ دینے کے خوف سے بعض دفعہ شادیاں نہیں کر رہے. میری کئی ایسے لوگوں سے بڑی بے تکلفی سے بات ہوئی کہ واٹ اسٹاپس یو ٹو گیٹ میرڈ. ایک لڑکا جس کے ساتھ آپ اتنے مثال سے رہتی ہیں یا آپ اس کو اپنا بوائے فرینڈ کہتی ہیں یا وٹ ایور, آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ نان مسلمس کے ساتھ ہی یہ بات ہو سکتی ہے, مسلم سے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا. تو جب میں نے ان سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے اس کا مجھے یہی جواب دیا. ایک نے کہا کہ ویری ایکسپینسو, وی کینٹ افورڈ میرڈ, شادی نہیں افورڈ کر سکتے. پھر مجھے لگا شاید یہ پاکستان اور انڈیا کے طریقے سے شادی کریں گے, لیکن پھر مجھے لگا کہ یہاں بھی شادی کی کافی اچھی خاصی رسومات ہوتی ہیں اور خطرے ہوتے ہیں. پھر کسی نے کہا نہیں رسپانسبلٹیز بہت سی ہیں نا. یہ ساری باتیں موسٹلی نیبرز میں اور ساتھ رہنے والوں میں ہوتی ہیں. ان کا ایک بیبی ہونے والا تھا جب وہ مجھے ملی. قصہ مختصر, جب میں نے تھوڑی سی بات کی, ہم تو اپنے حساب سے پوچھتے ہیں نا, تو وہ بار بار کہتی مائی فرینڈ از کمنگ, مائی فرینڈ از کمنگ. تو مجھے لگا کہ اس کی دوست آ رہی ہوگی اس کی ہیلپ کو یا اس کی ایسی کیفیت ہے وٹ ایور, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جس لڑکے کو ہم اس کا شوہر سمجھتے ہیں وہ اس کا فرینڈ ہے اور بالکل وہ لاسٹ ڈیز کی پریگننٹ تھی لیڈی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ریئلی یعنی تم نے شادی نہیں کی؟ کہتی نہیں, کب سے ساتھ رہ رہے ہیں؟ میں بھی 4 سال سے نا. تو میں نے کب آئے؟ کہتی وی ڈونٹ ہیو منی, منی نہیں ہے. پھر بیبی ہمارے سامنے ہوا, بالکل نیبر میں ہمارے. یعنی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی تک شادی نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ ایک آدھ جگہ پوچھا تو میری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یو نو اسلام گیوز ٹو مینی رائٹس ٹو وومن, ایک لڑکی جب شادی کر لیتی ہے تو سیکیور ہوتی ہے. تو مجھے اس کے جواب میں, وہ ڈینش تھی شاید, ہم جہاز میں کہیں بات کر رہے تھے, تو مجھے نا اپنے ڈینش قوانین سکھانے لگے تھے, یو نو ٹو مینی رائٹس تھیئر ٹو. یعنی کہ اس نے جو مجھے کہانی سنائی اس کا خلاصہ کیا تھا کہ ادھر بوائے فرینڈ ہونے کے ناطے سے بھی ایک لڑکا اگر ایک لڑکی کے ساتھ رہتا ہے اور بچہ ہو جاتا ہے تو بہت سارے رائٹس ہیں. تو مجھے لگا کہ صرف اللہ کے قانون نہیں ماننے نا, آہستہ آہستہ ناک ادھر سے نہیں پکڑو ادھر سے پکڑو, اپنی حالات کو صحیح کرنے کے لیے لوگ اس طریقے سے قوانین بنانے پہ مجبور کر دیے گئے ہیں, اس کے باوجود اللہ کے قوانین کو نہیں مانتے. میں نے کہا کہ آئی ایم ویری مچ سیکیور. پھر جب کسی کو یہ پتہ چلے اچھا آپ لوگوں کی شادی اتنے سال ہو گئے ہیں, آپ اتنے 10 سال سے یہ سے اکٹھے رہ رہے ہیں یہ وہ, تو لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں نا. تو میں جو چیز اس وقت آپ کے سامنے لاؤں گی کہ زوجین کے حقوق سے پہلے اگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شادی کرنے کے فوائد کتنے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ مرد اپنی بیوی سے سکون حاصل کرتا ہے. پھر اللہ نے اس کو لِبَاسُ لَهُنْ وَهُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ کہا, شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے جسٹ لائک گارمنٹس, کپڑے ہیں. کپڑا انسان کے مزاج کا عکاس ہوتا ہے. آپ کسی کی ڈریسنگ سے ہی اس کا مزاج پہچان لیں کہ کون کس مزاج کے اندر سے اور کون کتنا شائستہ اور کتنا الجھا ہوا ہے اور کتنا بے ہنگم ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مودت و رحمہ کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں سورہ روم میں. مودت ود سے ہے جس میں سیکشل ڈیزائر بھی کہہ سکتے ہیں, انٹیمیسی کہہ سکتے ہیں, ایموشنز کہہ سکتے ہیں. یعنی عموماً جو جوانی کی محبت ہوتی ہے یا شادی کا شروع میں جو ایک بے چینی اور بےتابی والی محبت ہوتی ہے, لیکن پھر آگے اس کے ساتھ رحمہ کہہ دیا. رحمہ کے بڑھاپے کی محبت کہ چلو کوئی اب کشش نہیں ہے تمہیں اس میں, اس کو تم میں, اور وہ بیمار ہیں, وہ جسم بے ہنگم ہو گیا, وہ بچوں میں لگی رہتی ہیں, یہ ہے وہ ہے دس اینڈ دیٹ, لیکن اب تم اس پہ رحم کرو. وہ بھی بیمار ہے, تم بھی بیمار ہو, تم بھی بوڑھے ہو رہے ہو, وہ بھی بوڑھی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بوڑھے بوڑھیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی دوائیوں کی خیال کرتے رہتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اسلام میں شادی از ناٹ جسٹ اباؤٹ سیکس. یہ جملہ لکھ لیجئے शादी का मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर नहीं है, हाँ दिस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ थिंग, क्योंकि एक मर्द के लिए उसके कपड़ों का इंतज़ाम करना, खाने का इंतज़ाम करना, उसके लिए घर को साफ़ रखना, ये माँ भी कर देती है, बहन भी करती है, बल्कि ज़्यादा खुशी से करती हैं माँ बहनें। लेकिन असल बात ये है कि जो ख्वाहिश एक मर्द एक बीवी से पूरी कर सकता है, वो दुनिया की किसी और औरत से पूरी नहीं कर सकता। यानी बीवी का अगर आप एक जुमले में लिख लीजिए कि शी इज़ द ओनली वन हु कैन फुलफिल द डिज़ायर्स ऑफ अ मैन, और निकाह का बंधन एक ऐसा बंधन है कि जिसमें ख्वाहिशात की तकमील भी हो जाती है और जज्बात को सुकून भी मिल जाता है। और हकीकत ये है कि शादी के बाद जो मोहब्बत पैदा होती है, ये बग़ैर शादी के हो नहीं सकती। नबी सल्लम ने फरमाया, दो अजनबियों के बीच में जो चीज़ मोहब्बत पैदा करती है, निकाह उसमें सबसे आगे है। क्या पता चला कि पहले मोहब्बत का तसव्वुर दे देना और शादी ना करना, ये आज का कल्चर है। लव तो एट फर्स्ट साइट है, और रोमांस तो आप 12 साल की उम्र में और 13 साल में यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, लेकिन शादी 18 साल तक नहीं कर सकते। इस्लाम में शादी के बाद ये जज्बात का उभरना और इन चीज़ों का आगे बढ़ना, इसका रास्ता वहाँ से बनता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि चीज़ ही नहीं है, खाना है ही नहीं तो भूख लगा दे और भी बातें होंगी, खाने की बातें ही करने लग जाए तो और भूख भड़केगी ना। खाना नहीं है, आप खुद भी देखते होंगे कि खाना सामने ना हो तो आप सारे दिन काम करते रहेंगे, जो ही सामने कोई चीज़ देखेंगे आपका हाथ चलने लगेगा। आज की सोसाइटी में ये बहुत ही ज़्यादा एक वर्स्ट थिंग दिखी, और वो क्या है कि भूख पहले लगा देते हैं और चीज़ इज़ नॉट अवेलेबल। बचपन से आप तो छोटे बच्चों को, आपको मुझे नहीं पता कि यूएसए में भी क्या रूल है, लेकिन यूरोप में एक से ज़्यादा जगह पे मैं ये चीज़ क्लोजली समझ भी चुकी, गवाहियाँ मौजूद हैं कि जिसको आप फ्री के कहेंगे, वहाँ बारने हागे बोलते हैं नॉर्वे में, और ऑफ कोर्स यूके में डे केयर सेंटर्स और उससे ऊपर, यानी जिसको हमारी ज़ुबान में कच्ची पक्की केजी, केजी के बच्चे को बॉडी पार्ट्स दिखा दिखा कर एजुकेट करने लग गए। वी आर टीचिंग देम ह्यूमन बॉडी, ये कोई टीच करने वाली बातें हैं? क्या बताइए कि बच्चे को पॉटी ट्रेन माँ करती है या स्कूल करता है? बच्चे की जो हाइजीनिक ज़रूरतें हैं, टॉयलेट कैसे यूज़ करना, क्या करना, ये माँ का काम है या स्कूलों का काम है? आज माओं के काम स्कूलों ने ले लिए, और हमारे अपने साथी गवाही देते हैं जो खुद भी उसी इस मुल्क में रेस्ट हुए कम अज़ कम, कि उसका जो चीज़ हमारे दौर में 7वीं 8वीं क्लास में बताते थे, 7th 8th ग्रेड में, वो अब हमारे बच्चों को 2nd 3rd ग्रेड में बताने लगे हैं। और मासूम बच्चे, 4 4 5 5 साल के बच्चे आके मामा से पूछते हैं, मामा इट्स ट्रू, मामा इज़ राइट, जो आज मुझे स्कूल में बताया, ये सच है, ऐसे ही होता है, बिलीव मी। और इससे बढ़ के बात बहुत आगे चली गई है। तो याद रखिए कि इस्लामी माशरे में शौहर और बीवी का ताल्लुक इज जस्ट लाइक एक नई बुनियाद डलना। एक ख़ानदान की पहली बुनियाद कब डलती है? जब एक मर्द और एक औरत के बीच में एक माहदा, एक एग्रीमेंट होता है कि वो अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक खुशगवार इज़दवाजी ज़िंदगी बरकरार रखेंगे, और यही माशरे का हुसन है। आप सूरत निसा 19 को देख लीजिए, और आप हज्जतुल विदा के मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात जो तिर्मिज़ी 1163 में आपको मिलती है, आपने फरमाया कि खबरदार, तुम औरतों से भलाई करो, वो तुम्हारे पास कैदियों की सूरत में है, तुम सिवाय इनके किसी चीज़ के मालिक नहीं हो, मगर ये कि वो खुली और वाजे बेहयाई और ऐसी बात करें, अगर वो ऐसा करें तो फिर बिस्तरों से उनसे अलग हो जाओ, फिर उनको ज़र्ब लगाओ। कुरान में ये सारी बातें भी हैं, हदीस में भी हैं। तो क्या पता चला कि इस्लाम में ये बहुत डिफाइंड किस्म की चीज़ है। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम मैं अपने दिल को मुतमईन पाती हूँ कि जो मेरे दिल में होता है, मैंने इस पे बहुत बात की है। निकाह A to Z पूरी सीरीज़ है, दो इसके हिस्से हैं, बिफोर मैरिज क्या राइट्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, क्या करना है, और आफ्टर मैरिज, दोनों को अलग अलग रखा हुआ है वेबसाइट पे, ये मौजूद है। फिर इसी तरह अगर आप वेबसाइट पे जाकर इसी टॉपिक को खोल कर देखें तो आपको कितने ही टॉपिक्स मिलेंगे, जिसमें पुरसकून घर, मेरा घर मेरी जन्नत, घरों को पुरसकून कैसे बनाया जाए। यूट्यूब पे मेरा लिए सबसे ज़्यादा जो लेक्चर सुना जाता है हमारे लेक्चर्स में से, वो हाउ टू मेक योर हस्बैंड हैप्पी, 60 टिप्स। बच्चियों की शादियां स्कूल में जब होती हैं तो उन शादियों के मौके पे लेक्चर्स होते हैं, तो आप उनसे या किसी और से फ़ायदा उठाएं, और जो लोग सुनते हैं उनको मेरे हले ए टू जी पता है कि वट आई थिंक अबाउट दैट कुरान और सुन्नत की रोशनी में। यहाँ आज क्या करूँगी, चूंकि बात हकूक की है, अब इसमें डिटेल्स तो नहीं, तो हम हकूक देखेंगे, नंबर एक मुश्तरका कॉमन राइट्स, फिर उसके बाद हम देखेंगे शौहर के क्या हैं और बीवी के क्या हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, हमने आज उसको पीछे डाल दिया। तो सबसे पहली बात है कि कॉमनली दे बोथ आर ड्रेस टू अदर, सूरत बकरा 187, यानी शौहर बीवी का और बीवी शौहर का लिबास है, मुराद जय के रासदान होते हैं, अमीन होते हैं, एक दूसरे से खयानत नहीं करते। लिबास देखिए कि आपके जिस्म के ऐब दूसरों को तो नहीं दिखाता ना, गर्मी सर्दी से बचाता है, तो शौहर बीवी दुख सुख के साथी होते हैं। फिर आप देखिए कि लिबास जो है, जिसकी जो चॉइस होगी उसको देखकर आपको उसका टेस्ट समझ आएगा, एक लड़का अपने लिए शादी के लिए कैसी लड़की चूज़ कर रहा है और एक लड़की कैसा लड़का चूज़ करती है, इससे आपको उसका टेस्ट पता लग जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि लिबास कद के साथ बढ़ता जाता है ना, आप छोटे थे तो छोटा लिबास था, बड़े हुए तो बड़ा हुआ। शौहर बीवी वर्क के साथ मोर कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं, मोर अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। हो सकता है शादी के शुरू के दिनों में आपकी उनसे कई बातें ना मिलती हों, उनको कुछ पसंद आपको कुछ पसंद, वो रूठ गए आपको समझ ही नहीं आई, दो दो दिन लड़कियां परेशान रहती हैं, हुआ क्या है, ये नाराज़ किस बात पे हो गए। अक्सर न्यूली कपल में ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, बीवियाँ कहती हैं हमें पता ही नहीं किस बात पे नाराज़ हो जाते हैं। इसी तरह हस्बैंड को नहीं पता होता ये मुंह क्यों सजाया हुआ इन्होंने, ये बेगम को क्या हो गया। शुरू में ऐसी ज्यादा चीजें होती हैं, 2 साल दे दीजिए पुरसकून होकर, 1 साल तो अच्छा है लेकिन आजकल जरा हालात ज्यादा ही नाजुक है, तो 2 साल दे दीजिए। 2 साल के बाद आपको उनके नाराज होने से पहले ही पता लग जाएगा ये अब नाराज होंगे, ये हो चुके हैं, ये अब होने वाले हैं, आप उनकी नब्ज पहचान लेंगी। जाइए अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए। और मैंने अपने वाले से एक बात सीखी थी, तब मुझे अक्ल भी नहीं थी जब सीखी थी, वो कहते थे कि बीवी अपने हस्बैंड से 15 मिनट आगे होती है। अब क्या समझ आई क्या होती है, यानी 15 मिनट बाद आफ्टर 15 मिनट वट हस्बैंड रिएक्ट या वट ही नीड द वाइफ शुड नो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पल्लू से बांधी हुई है ये बात, ये कोई जादू नहीं होता कि आप हस्बैंड पे कर दें, ये जादू की छड़ी भी नहीं होती। पहली बात है ये अल्लाह का काम है, शौहर के दिल में बीवी का और बीवी के दिल में शौहर का प्यार डालना सरासर अल्लाह का काम है। वो जो सूरह तौबा में अस्हाबे रसूल और नबी सल्लम की मिसाल है ना, कि सारी दुनिया भी दे देते मा अल्लफ्ता बैना कुलूबी, इनके दिलों में आप मोहब्बत नहीं डाल सकते थे जो इनको आपसे प्यार है, यानी नबी सल्लम के साथ सहाबा को जितनी मोहब्बत थी ना, तो अल्लाह अपने नबी को कहते हैं आप नहीं थे डाल सकते, ये मैंने डाला है। एग्जैक्टली यही बात ज़रूरी है कि शौहर बीवी में भी अल्लाह ही डालता है। कभी बहुत अच्छी बीवियों को बहुत ही चैलेंजिंग हस्बैंड्स मिल जाते हैं, और दूसरा मामला भी दोनों तरफ है, इस पे भी अपनी तकदीर की तरह राजी रहना चाहिए। बस लोग दूसरों के शौहरों को बहुत कोऑपरेटिव देखकर समझते हैं कि ये चूंकि ऐसे शौहर हैं इनके तो फिर ये तो ऐसी होंगी, गलत बात है। देखिए आप तस्वीर का एक रुख देखते हैं दूसरा नहीं देखते, यू आर लुकिंग अपेरेंटली यू डोंट नो द इनसाइड व्हाट इज़ द थिंग और इट्स टाइम टेकन, बिलीव मी क्या तय्यबात उल तय्यबीन और अल खबीसात उल खबीसून, सूरत नूर में है तो वो दुल्ला बिन उबई और उसकी बातों चीतों के बारे में और सारी तोहमत की जो बातें थी, लेकिन हस्बैंड वाइफ के अंदर 80% तो यही रूल है। पाक मर्दों को अल्लाह पाक बीवियाँ देता है, नापाक को नापाक देता है, और ये चॉइस है कि अल्लाह ताला कहते ला तन के हिल मोमी अल्ला मोमिना, नहीं निकाह करता, ये नहीं कहा नहीं करो, मैं उन फिकों में नहीं जा रही, उसकी दोनों तफसीरें मौजूद है, नहीं करता मर्द किसी जानिया से निकाह मोमिन मर्द, और या ना करो हुक्म भी है खबर भी, टेस्ट ही नहीं मिलता। आपका बच्चा इतना अच्छा नेक नमाजी ना, निगाहें झुकाने वाला और इज्जत को संभालने वाला, वो कैसे एक बेपर्द और ऐसी लड़की से शादी करने की ख्वाहिश रखता है जिसको सब देखे, जो नमाज भी ना पढ़े, इज़ नॉट पॉसिबल। सेम थिंग आपकी बेटी, माशाल्लाह आपने उसको बहुत बाहयात तरीके से पाला है, वो कैसे किसी ऐसे मर्द के साथ शादी कर ले जो नमाज भी नहीं पढ़ता, और हो सकता है कि उसके दूसरों के साथ ताल्लुकात भी हों, ये होता ही नहीं है, इट डजंट हैपन। लेकिन जब आइडियल हालात नहीं होते, जैसे अब हमारा पिछली पूरी सदी दैट वॉज अन आइडियल सेंचुरी ऑफ द मुस्लिम्स, अब इसमें ऐसे रिश्ते हुए, माँ बाप ने गलत किया, आज कई ऐसी तहज्जुद गुजार औरतें हैं जिनके शौहर एक नमाज भी नहीं पढ़ते, और पाक दामन औरतें निगाह नहीं उठाती, जानी मर्द है, शराबी मर्द है, 35 साल से एक औरत अपने मर्द के पास रह रही है और आखिर मेरे पास आकर कहती है कि एनफ इज़ एनफ नो। और जब सारी कहानी सुनी मैंने कहा आप ये बात 2 साल बाद क्यों नहीं आई शादी के, जब आपको पता लगी थी, जी आप 3 माह बाद पता लगी क्यों नहीं आई, नहीं खानदान माँ बाप की इज्जत भाई बहन, अब क्या हुआ, अब बस हो गई है, पहले तो मैं और मेरे बच्चे भुगतते थे, उनके सामने गालियाँ पड़ती थी, अब दामाद के सामने झगड़ा होगा, अब बच्चों के सामने जब वो गंदी हरकतें करेंगे या करेंगे तो जी गलती आपकी है। हमारे सेटअप में इंडो पाक कहूँ कह लें या मशरकी कह लें, इसमें एक बहुत बड़ी गलती है कि बच्चियों को घर चलाना निभाना सिखाते हैं बट घर छोड़ने का तरीका नहीं सिखाते। इफ इट हैपन्स व्हाट शुड यू डू? गलत रिश्ते माँ बाप ने जोड़े, बाहर का रिश्ता देखकर रिश्ता कर दिया, वहाँ के पता चला उसकी तो चार दोस्त हैं, उसके तो एक दो बच्चे भी हैं, अब क्या करें? चुप चुप चुप, पीछे कोई नहीं, किसके पास जाएंगे? भाई होंगी, भाभियाँ होंगी, और इस वक्त जुल्म की चक्की में पिस रही हैं ऐसी औरतें। फिर अखीर जिन मुल्कों में आप बैठे हैं वो तो माँ बाप से ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, वो दिखाते हैं, वो कहते हैं कम हेयर वी विल सपोर्ट यू, हम तुम्हें घर देंगे, मियाँ पैसे नहीं देता, ये पकड़ो पैसे। आज इस वक्त इतना बड़ा इशू है यूरोप में कि एक औरत शौहर के घर में रहे तो उसको क्या मिलेगा? मसलन 10,000 क्रोन मिसाल मर्द की पे है औसत, मिसाल दे रही हूँ आपको, बीवी को तो 1,000 दे देगा पॉकेट मनी, 2,000 दे देगा, हालांकि इतना भी नहीं दे पाएगा। अब वो बीवी मर्द की बातें भी सुनेगी, उसके मर्जी से घर से निकलेगी, जाएगी आएगी, लाइबिलिटीज इट्स गुड, बट जब पाबंदियाँ इसको कह लेंगे तो बैड है, प्रोटेक्शन कह लेंगे तो इट्स गुड। देखिए एक है प्रिजनर, इफ़ यू फील यू आर प्रिजनर तो आपको बोझ लगेगा, और इफ़ यू फील कि इट्स योर प्रोटेक्शन डोंट गो आउटसाइड, बाहर बहुत ख़तरा है, तो आपको प्रोटेक्शन लगेगी। जब सोच ये दे दी जाती है तो वो लड़कियों को फिर क्या लगता है, शौहर 2,000 देता है, आज इसको छोड़ के जाके गवर्नमेंट के पास जाएंगे, वी कैन स्टे विद, मेरा हस्बैंड मारता है डांटता है ये है वो, आपको क्राइसिस सेंटर देंगे, आपको 10-12 हज़ार क्रोन का किराए का घर देंगे जो गवर्नमेंट पे करेगी, 10,000+ क्रोन आपको पॉकेट मनी देंगे, सपोर्ट करेंगे आपको, और आप कहेंगे वाह हाथ में आज तक 1,000 से ज़ायद मियाँ ने दिया नहीं, या तो 10,000 का चेक आ गया, चेक तो नहीं आते वहाँ, किस्सा मुख्तसर, जो वहाँ के लोग सुनेंगे उनको मेरी बातें 101% समझ आएंगी, आपको नहीं आएंगी। इतना मशहूर हो गया ये बात कि आप औरतें सिर्फ इसलिए अपने शौहरों के साथ नहीं रह रही कि बाहर ज़्यादा मिल रहा है, फिर बाद में धक्के खाती हैं, 5-6 साल धक्के खा खू के फिर वो कहती है आओ जॉब करो, हम तुम्हें रोज़ कैसे खिलाएं? लेकिन ना मियाँ को तो रोज़ कुछ आपसे मिल सकता है ना, मिसाल है हर दिन आप अपने मियाँ के लिए पुरसकून जरिया तो बनी ना, तो वो अगर आपको रोज़ अगर 100 रुपये भी दे दे तो इट्स ओके, उसको साथ साथ ही मिल रहा है, रिफंड हो रहा है, इन्होंने आपको कहाँ से देना है? देंगे हमारे टैक्सेस से, टैक्स आप देंगे, पैसे वो आपके औरतों को बच्चों को खिलाएंगे। इस वक्त यूरोप में एक बिग बिग पार्ट ऑफ द टैक्सेस इज गोइंग टू क्राइसिस सेंटर, जहाँ औरतें और बच्चे, बच्चों को वो खुद लेके जा रहे हैं बाहर, ये तो इशू शुरू हो गया ना कुक का, तो इतने पोल खुलेंगे कि आप समझ ही नहीं सकते। बच्चे मुसलमानों के गवर्नमेंट खुद पकड़ रही है, आप अपने बच्चे को टच नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, बच्चा ले जाते हैं स्कूल से आप आए तो पुलिस पहले खड़ी होती है क्योंकि आपने पार्किंग लॉट में बच्चे को कहा था घर चलो तुम्हें मारती हूँ, और वो मार को किल कहते हैं, आई विल किल यू, और हर माँ बच्चे को नहीं डांटती, यानी एक माँ रियल स्टोरी है कि अपने बच्चे को स्कूल से ले रही है, बच्चा बैठ नहीं रहा, कहती आज घर चल, मार को शायद वो हिट ही कहते हैं आई विल हिट यू या आई विल किल यू, वो बच्चे की माँ की बात किसी दूसरे ने सुनी जो आई हुई थी अपने बच्चों को, जस्ट शी कॉल फॉर पुलिस, बार ने वन कहते हैं ऐसी पुलिस को, बार ने मीन बच्चा वन पुलिस, अच्छा जी, उन्होंने उसको बता दिया कि ये माँ अपने बच्चे को कह रही है कि मैं तुम्हें घर जाके कत्ल कर दूंगी या मार दूंगी। वो औरत घर पहुंची, उसके डोर पे पुलिस खड़ी थी, दे टुक ऑल द किड्स कि तुमने इनको घर जाके कत्ल कर देना या मारना दे दो हमें। क्या सुनाऊं मैं आपको, क्या इतने छाले हैं, मैं तो इस टॉपिक पे बोलती भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा दिल गलने लगता है। इस वक्त हमारी नस्लें वो फिरौनियत के चुंगल में तो नहीं है ना कि युजब्बे हो ना बना कुम यस्तहयू ना निसा कुम, आज ये मसला इस तरह हमारी औलादें ले रहे हैं, और 90% मुस्लिम बच्चे, बात है इतना बच्चा है और इतना सा स्क्रैच देख लें अगर अगले दिन उनकी बाजू पे, उसको ऑफिस में बुलाते हैं, कैंडी देंगे, चॉकलेट देंगे, ये क्या हुआ था, हु हिट यू, मॉम हिट यू, बाप हिट यू, बच्चे को क्या लगे? माँ का नाम देगा माँ की जेल, बाप का देगा बाप जेल में, ये हकूक नहीं है। इस्लाम ने जो हकूक व फ़राइज़ का खूबसूरत सिस्टम दिया है, हमारे कल्चर में कहते हैं माँ से ज़्यादा प्यार जतलाए वो फब्बे कुटन होता है, आपसे माँ से ज़्यादा कोई प्यार कर सकता? आप हकूक और राइट्स और रेगुलेशंस के नाम पे एक्सट्रीम पे चले गए। इस्लाम ने क्या किया था, कुछ हकूक कुछ फ़राइज, गिव एंड टेक, लो और दो, कभी लेता है बंदा कभी मुसलसल दे रहा होता है फिर इकट्ठा ही ले लेता है। मैं कहती हूँ शादी के शुरू में 2 साल दें 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 दें, सारी जिंदगी लें लें लें, वल्लाही ये जो आज गर्दने तनती है साहबा में से कभी नहीं हुआ था कि आके खड़े हो जाए, लेकिन भी हमारा क्या हक है, आके क्या पूछते थे, माँ हक को जो जाती हमारी बीवी का हम पे क्या हक है। उनको गम ये था कि कहीं हम ना पकड़े जाएं, क्यामत के दिन हमारा हाल ना बुरा हो जाए। आज बिल्कुल ऑपोजिट है, जिनसे हुकूक लेने उनको तो तैयार नहीं किया गया, और जिन्होंने मांगने उनके हाथों में आपने स्लोगन्स पकड़ा दिए, तो आज जुल्म हुआ। इस्लाम शौहर बीवी को एक दूसरे का लिबास करार देता है, गर्मी सर्दी कहाँ नहीं होती। मुझे बताइए, आप इतने बड़े ऐसे ही हो गए, मार खा के नहीं हुए, डांट खा कर नहीं हुए क्या? आप इस मुल्क में, मुझे नहीं पता बच्चों को मारना जुर्म है या कितना को मार सकते हैं, हैं? जुर्म है ना, आपको पड़ी मार के नहीं पड़ी। फिर इस तरह के माँ बाप को, जिसको आप अपनी जुबान में कहते हैं ना कि नाक से लकीरें लगवाते हैं, एक दफा उनका नाम आ जाए किसी रिकॉर्ड में, वो 3 माह तक तो उनको मुस्तकिल बुलाते हैं मीटिंगों में, बच्चे पे नजर रखते हैं, रोज बच्चे से पूछें या जब एनी टाइम दे कैन कम एट योर होम टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन। फिर दूसरी मीटिंग होती है, फिर तीसरी, 3-4 माह में जब वो कहानी पूरी हो जाए तो फिर वो केस आपका ड्रॉप करेंगे, उसके बाद एक नया केस बन जाएगा, और फिर आप बच्चे को बाहर नहीं ले जा सकते। एक ऐसा कपल था, और जो भी हुआ, फिर बच्चे भी ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। अब बच्चे कहने लग जाते हैं कुछ, आई विल कॉल बाने मान। एक बाप ने जब इन सारे केसों से जान छुड़ाई, जिस दिन वो फ्री हुआ, टिकट कटाई, पाकिस्तान ले गया, और एयरपोर्ट पे जूता उतार के कहने लगा, अब बुला किसको बुलाते, बिलीव मी इट हैपेंड, बिलीव मी। ये बात सच्ची बात है, दुख की है, हमारी नस्लें अब हमारे अपने हाथों से जा रही हैं। ये तो एक टॉपिक छेड़ दिया किसी दर्स में ना कि नस्लें कहाँ जा रही हैं, तो आप देखेंगे पानी जैसे हाथों से निकलता है, ऐसे हमारे बच्चे हमारे होते हुए हमारे नहीं है। वो सोचते हैं यू आर टू मच, आप हम पे ज़्यादा जुल्म करते हैं, आप तो कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गए, दिस एंड दैट। तो इस्लाम ने बैलेंस के साथ रखा है, कुछ आप दीजिए कुछ आप लीजिए। दूसरा मुश्तरका हक जो शौहर बीवी के एक दूसरे पर है, एक दूसरे को सुकून दें, पुरसकून और खुशगवार जिंदगी बनाने में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का बराबर का हिस्सा है। सच्ची बात हो, खरी बात हो, सीधी बात हो, मामलात में सच्चाई रखिए, दिल से इखलास और मोहब्बत रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबातुन निकाह के अंदर जो बात की है, अगर आप उसी को देख लीजिए तो तकवा है। सूरत निसा की पहली आयत, निकाह का खुतबा, या अय्युहन नासु तक्कू रब्बकुम, आया लोगो डर जाओ अपने रब से। खुतबा निकाह में सूरत निसा की पहली आयत पढ़ी जाती है, 2 दफ़ा तकवा का जिक्र है, शुरू में भी और वत्तकुल्ला एंड पे भी है। क्या पता चला कि दोनों में तकवा होना चाहिए, एक दूसरे का हक है। जब तक आप एक दूसरे के लिए वो ना पसंद करें जो आप अपने लिए करते हैं, ताल्लुकात अच्छे हो नहीं सकते। बुखारी की रिवायत है 1:3 के मोमिन दूसरे के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए करता है। फिर इसी तरह तीसरी चीज़ जो मुश्तरका है दोनों के बीच में, वो मोहब्बत, शौहर को बीवी से और बीवी को शौहर से मोहब्बत होनी चाहिए। इसी को रहमत कहते हैं, इसी को फिर मवद्दत, और बाकी चीज़ों में जो मैंने अभी आपको बात बताई। बुखारी का हवाला नोट कर लें, 5236 और अबू दाऊद 2578। यानी दोनों मोहब्बत करें, सुकून हासिल करें, सूरत रूम 21, और बुढ़ापे में रहमत, जवानी में मवद्दत, ये दोनों हैं। फिर इसी तरह से चौथा मुश्तरका हक क्या है, हुस्ने अखलाक, शौहर को बीवी से और बीवी को शौहर से अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। और आपने फरमाया, मैं अपनी बीवियों के हक में सबसे अच्छा हूँ, तिर्मिज़ी 1162। यानी अगर बीवी गाली नहीं दे सकती ना शौहर को, तो शौहर को बिल्कुल हक नहीं है कि वो भी बीवी को गाली दे। बीवी शौहर को मार नहीं सकती ना, तो शौहर को भी हक नहीं है कि वो बीवी को मारे। याद रखिएगा, ये एक फितरी सी बात है। इसमें ये हमारा इंडो पाक कल्चर तो हो सकता है कि आप ना बोलें वो ना कर ले, और मर्द तो ऐसे ही होते हैं, मर्द तो गालियाँ ही देते हैं, हमारे भी शौहर देते थे, तुम क्यों नहीं बर्दाश्त कर रही, ये वो, तो ये फजूल बातें हैं, इस्लाम इसको नहीं मानता। अगली चीज़ सुनकर आपने बहुत ही उछलना है, लेकिन फिर भी क्या है, और वो है घर का काम। जी, घर के काम काज में शौहर और बीवी को एक दूसरे से तआमुन करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े धो लेते थे, पैवंद लगा लेते थे, झाड़ू लगा देते थे, बकरी का दूध धो लेते थे, और ये तआवुन मोहब्बत बढ़ाता है। शौहर बीवी निकाह के वक्त पे कोई डिसाइड नहीं करते जॉब डिस्क्रिप्शन, ड्यूटी लिस्टें नहीं होती कि तुम क्लीनिंग इंचार्ज हो या तुम कैंटीन इंचार्ज हो और तुम ऑफिस इंचार्ज हो, ये प्यार और मोहब्बत की बातें होती हैं। जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ मामला हो उतना अच्छा है। छठा हक जो दोनों का म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल है, वो है मामलात में नरमी। शौहर को बीवी से और बीवी को शौहर से नरमी इख्तियार करनी चाहिए। सही मुस्लिम 6602। सातवां हक दोनों का एक दूसरे पर क्या है कि दोनों के चेहरों पे शगुफ्तगी हो, स्माइली फेसेस हो। अब तो हो ही जाएंगे, इस कोर्स में ना हुए तो फिर मेरा लिए एक नया कोर्स, स्माइल कोर्स करवाना पड़ेगा। शगुफ्तगी हो, देखने वाली की या देखने वाले की थकन उतर जाए। अपने आप को एक क्राइटेरियन पे रखे। खूबसूरत औरत वो है कि उसका शौहर उसको देखे तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, और खूबसूरत शौहर कौन है, अच्छा कामयाब शौहर कौन है कि बीवी उसको देखे तो एकदम उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए। ये बहुत अहम ज़रूरत है। बिलीव मी, अगर आप ये गुर इस्तेमाल कर लें, कई झगड़े और लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए हैप्पी फेसेस, ये चिढ़ वाले, तनकीद वाले, गुस्से वाले, शिकवों शिकायतों से भरे हुए चेहरे, ये मज़ीद हालात को ख़राब करेंगे। बड़े से बड़ी लड़ाई आपके चेहरे के स्माइल और हंसी और शगुफ्तगी से दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। फिर इससे कुर्बत भी होगी, मोहब्बत भी होगी। फिर इसके बाद आठवां, म्यूचुअल राइट या बाहमी हकूक पे से एक चीज़, बाहमी अदब एहतराम, रिस्पेक्ट लिख लीजिए। दे बोथ शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। यह इस रिश्ते को मजबूत करेगी, यानी दोनों आपस में अच्छे तरीके से करें। अब देखिए, मैंने आपको 8 पॉइंट्स दिए हैं ना, 8 पॉइंट्स कौन से हैं जो दोनों को करने हैं। अगर ये सारे ठीक हो जाएंगे ना, तो इसके बाद जो अगले हैं ना, ये इसमें 98% वैसे ही ठीक होंगे। पहले शौहर के हकूक देख लीजिए कि शौहर के हकूक के हैं। नंबर एक के जो अच्छी बीवियाँ होती हैं वो सादतमंद होती हैं, कान एतात, अल्लाह ताला की नाफरमानी के सिवा अपने शौहर की हर बात को मानने वालियाँ होती हैं। सूरत निसा 34। शौहर के हकूक में क्या कि बीवी फरमाबरदार हो, सूरत निसा 34। करना पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है कि आप कहे कि नहीं जी मैं फरमाबरदार हूँ तो वो ना हो। देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि जब आप फरमाबरदार होंगे तो वो खुद भी आपकी बात मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर बुखारी 3247 इसका रेफरेंस लिखना चाहे लिख ले। दूसरी बात, जो शोहर का हक है वो है कि बीवी अपने शोहर के माल, इज्जत और घर की हिफाजत करे। सूरत निसा 34 ही है और सिलसिला तो सही है 1203। यानी बीवी को फजूल खर्च नहीं होना चाहिए, शोहर के पैसे और अपने ही घर वालों के तोहफे ना हो, ऐसी जगह पे शोहर का माल ना खर्च करे जहाँ वो पसंद नहीं करता। और इसी तरह इज्जत से मुराद ये कि औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करे, हो बीवी अब शोहर की और उसकी मोहब्बत किसी और से, और ये नहीं होना चाहिए। और इसी में फिर तीसरी चीज़, बच्चे भी हैं, औरत अपने शोहर के बच्चों की बेहतरीन तरबियत करे, ये भी शोहर का हक है। फिर उसके बाद शोहर के हकूक में क्या है कि बीवी की नज़रें किसी और मर्द पर उठे ही ना, यकदुदना मिन अबसारिहिन्ना, सूरत नूर 31। यानी औरत के दिल, दिमाग, आंखों, निगाहों में कोई दूसरा मर्द ना हो, इवन शादी से पहले का कोई मामला था, ख़त्म, निकाह के साथ सारे मामले टूट गए। फिर अगली बात है कि शौहर का ये हक है कि उसकी बीवी नामहरम मर्दों से तन्हाई में, दूसरों के सामने, फ़ोन पे, अकेले में, कहाँ भी मीठी आवाज़ से बातें करती फिरे। यानी बात तो की जा सकती है, सूरत अल-अहज़ाब 32 आप सब जानते हैं, अपनी आवाज़ को दबाओ नहीं, मिठास नहीं पैदा करो। फिर इसी तरह से ज़ाती चीज़ों में बीवी दिलचस्पी ले। हज़रत आयशा घर के काम करती थी, अल्लाह के नबी की कंघी करती थी, आपके सर में तेल लगाती थी। यानी आप कह लें कि शौहर का ये हक है कि बीवी उसकी पर्सनल चीज़ों का ख्याल रखे। अगर शौहर आपको कहते हैं कि आप मुझे कपड़े निकाल दें या अगर ब्रश पेस्ट निकाल दें तो आप कहें ये मेरा तो काम ही नहीं है, तो देखिए ये कोई बातें लिखने या बताने वाली तो नहीं होती। केयरिंग कर लीजिए, वाइफ शुड बी केयरिंग। फिर नेक्स्ट क्या है कि बच्चों की ज़रूरियात। आप देखिए कि फितरी सी बात है कि मर्द बाहर की दुनिया में काम करेगा ना, कमाएगा, सारा दिन बाहर रहेगा, थका हारा आएगा, 5 वक्त मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेगा, कुछ कम्युनिटी वर्क करेगा। अब आप उसे कहें जी अच्छा जी सारा दिन मैंने बच्चों के पैंपर बदले हैं तो अब आप रात को बदलिए, ये तो गलत है। आज ये बातें सुनने में हैं, प्रैक्टिकली ये बातें मौजूद है। बीवियाँ कहती हैं इसका भी बच्चा मेरा भी है, दिन में मैं फीडर बनाती हूँ, मैं पैम्पर चेंज करती हूँ, रात में आप करें, तो आप तो 7 दिन में सो भी जाती हैं, वो काम पे कैसे जाएंगे। हमारे बड़े जो बात हमने सुनी, घर भी छोटे होते थे, जब तक छोटी उम्र का बच्चा होता था ना, इवन नर्सिंग एज में, मर्दों को अलग दूर कमरों में सिलवाती थी, बच्चा उस कमरे में नहीं सोता था जिधर बाप सोएगा। क्यों? कि माँ को भी फिक्र है घर वालों को कि इससे सुबह उठ के काम पे जाना है। अब एक बच्चा सारी रात रोए, तो सुबह उठ के दोनों ही रो रहे होते हैं, हाय आज इसने हमें सोने नहीं दिया। फजर पे कैसे जाएगा मर्द, 7 बजे उठ के जॉब पे कैसे जाएगा, बिजनेस मीटिंग कैसे अटेंड करेगा। बीवी को अपने मर्द को हर लिहाज से सेटिस्फाइड करना चाहिए। आप सो जाइए, मैं इसको लेकर दूसरे कमरे में जाऊंगी। ये जब हकूक का एक हमें शोशा दिया ना, तो उसमें फिर कुछ ज्यादा ही होने लग गए। फिर उसके बाद देखिए, शौहर के रिश्तेदारों के साथ यानी ससुराल, वो एक रवैया इख्तियार करे जो अपने शौहर से वो अपने माँ बाप के बारे में मुतवक्के है। सही बुखारी 893, ये अलग से भी आगे टॉपिक आ रहा है, फिर उधर देख लेंगे। फिर अगली चीज़ है कि शौहर का ये हक है कि बीवी नाशुक्री से बचे। आपने फरमाया कि जहन्नुम में कसरत औरतों की हैं, और वो अल्लाह की नहीं शौहरों की नाशुक्री की वजह है, बुखारी 304। फिर इसके बाद शौहर का ये हक है कि बीवी ज़्यादा वक्त घर में रहे, बिला ज़रूरत बग़ैर इजाज़त घर से ना निकले, अलहज़ाब 33, क़र्नफ़ी बुयूतिकुन। और इसी तरह से शौहर का ये हक है कि उसकी बीवी उसको हर मुमकिन खुश रखने की कोशिश करे, इल्ला ये कि अल्लाह की नाफरमानी हो या कोई गलत काम हो। चलिए गुस्सा दूर करिए, बीवियों के हकूक भी सुन लीजिए। पता चला कि आप कह रहे हैं मर्दों के हकूक हैं, तो आप देखिए कि मैंने आपको शौहरों के कितने हकूक बताए हैं, गिने आपने? आपने अपनी मर्जी से 12 लिख लिए हैं, मैंने 5 लिखाए हैं, कुछ चीज़ें उसकी तफसील थी, लेकिन आपके 14 हकूक हैं उन पे। खुश? आपको ज़्यादा मिल रहा है उनसे?